आने का। तो गांधारी को बुलाया जाता है, सोचो उस राजमहल में गांधारी को बुलाया जाता है। फिर दुर्योधन और दुशासन और वो लोग सब बुलाए जाते हैं वापस। अब गांधारी वो एक बहुत धर्मनिष्ठ स्त्री थी, तो गांधारी दुर्योधन को कहती है कि दुर्योधन तुम्हारा सौभाग्य है कि ये केशव आए हैं शांतिदूत बनकर, तुम्हारा सौभाग्य है कि वो लोग अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए पांडव, तुम्हारा सौभाग्य है मैंने जब सुना कि द्रौपदी के साथ तुमने जो अपमान किया, तब से मैं व्रत रख रही हूं तुम्हारी सुरक्षा के लिए, और गांधारी कर रही थी, मैं लज्जित हूं कि ये मेरा ऐसा कपूत ऐसे काम किया है। और दुर्योधन वो टोटल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे उसके पिता उसकी माता उसको सबके सामने कुछ भी कहें, इतना ज्यादा वो जिद्दी और निखट्टू था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसको। तो फिर भगवान ने दुर्योधन की ओर देखा, भगवान ने कहा कि नहीं ये नहीं मानने वाला। तब फिर भगवान ने वो पांच गांव का प्रस्ताव रखा, हम लोग केवल इतना सुनते हैं ना, इतना होने के बाद में भगवान ने कहा चलो दुर्योधन तुझे आधा हिस्सा नहीं देना है पांडवों को, केवल पांच गांव दे दे। दुर्योधन कहता है, अब देखो मना करने का तरीका देखो दुर्योधन का, किसी के प्रपोजल को मना करने का भी एक सलीका होता है। दुर्योधन बोलता है पांच गांव तो क्या, सुई के नोक जितनी भूमि भी मैं नहीं दूंगा। मतलब जैसे मैंने कहा कि किसी को मना करने का भी एक तरीका होता है, जैसे मान लो कि कोई बोले कि प्रभु जी आप घर पर आएंगे प्रसाद के लिए, तो अगर आपको नहीं जाना है तो आप बोल सकते हैं प्रभु जी थोड़ा बिजी हैं, पेट ठीक नहीं है, प्रभु जी ऐसे करके थोड़े एक कल्चर तरीके भी से भी बोल सकते हैं। मान लो कि कोई कहे चाहे आसमान गिर जाए चाहे धरती फट जाए मैं तेरे घर पे प्रसाद के लिए कभी नहीं आऊंगा। सोचो ऐसे कोई मना करता है किसी को, वो बेचारे को क्या लगेगा। तो दुर्योधन के मना करने का स्टाइल ऐसा था। अच्छा एक होता है कि हम ठीक से अपना मना भी कन्वे नहीं कर पाते, ये मेरे साथ एक बार हुआ था बचपन में। हमारे हिंदी के टीचर, उनका नाम तिवारी सर, तो वो अक्सर हमको घर बुलाते थे दूसरे क्लास के पेपर चेक करवाने के लिए। मतलब जैसे हम लोग 10th में थे तो 9th के हिंदी के पेपर्स हम लोग करेक्ट करेंगे, तो हमको बुला लेते थे घर पे। तो मेरे और मेरा एक फ्रेंड आशीष, हम दोनों की थोड़ी हिंदी अच्छी थी, तो हर समय हम दोनों को बुलाते थे। तो मेरे को शरद घर पे आना, हाँ तो, और आशीष को भी लेके आना, तुम दोनों आना, काम है, जरूरी काम है। हम समझ जाते जरूरी काम मतलब पेपर चेक कराने। तो हमको उसमें प्रॉब्लम नहीं होता था, प्रॉब्लम क्या होता था कि वो एक बहुत ही अजीबोगरीब चाय पिलाते थे, मलाई डाल के। मतलब आज दिन पहले से मेरे को मलाई पसंद नहीं थी, उसमें से चाय के अंदर वो सफेद दूध की मलाई डाल के चाय पिलाते थे। तो चाहे कितने भी पेपर चेक करा लो वो परीक्षा में मत रखो चाय का कप सामने। तो होता ऐसा ही था, जैसे ही हम लोग उनके क्वार्टर में, उनका जो टीचर्स का क्वार्टर था, क्वार्टर में अंदर प्रवेश करते थे, तो उनकी पत्नी को पूरा बिहार की घूंघट डाली हुई, तो वो अंदर रेडी रहती थी वो चाय बनाने के लिए। वो बता देते थे ये दोनों आ रहे हैं, दोनों के लिए वो वाली चाय बनाना, स्पेशल मलाई वाली चाय। तो हम लोग पहुंचे तो बोले तो हाँ ऐसा कर तू, पहले तो तुम लोग चाय पियो। जैसे हमने सुना नहीं सर हम लोग पी के आए, नहीं जरूरत नहीं, हम लोग पूरा वो चेक करना शुरू करें। हमको पता था, वो बताया भी नहीं उन्होंने कि क्यों बुलाया। हम प्रभु जी सर वो लाइए चेक करते हैं हम। अच्छा पता है तुमको? नहीं नहीं नहीं, पहले चाय पियो फिर भाग्यवान बनाइए, इनके लिए चाय बनाइए। अब हम लोग ठीक से मना भी नहीं कर पा रहे थे, एक देखो दुर्योधन का स्टाइल मना करने का, हम लोग ठीक से मना भी नहीं कर पा रहे थे। तो वो मेरे को ऐसे टोक रहा है, टोच रहा है कि साले मैं तेरे को बोला था मत आओ यहाँ पे, अब ये पीनी पड़ेगी चाय। तो एकदम ऐसे बड़ा कप उसके अंदर मलाई डाल के सामने, पियो पियो नहीं नहीं सर हम थोड़ा ठंडा होके पियेंगे इसको, ठंडा होने जाना, बहुत गर्म लग रही है। तो फिर वो पेपर वगैरह लेकर आए, फिर वो भी अपनी चाय मलाई के साथ पी रहे हैं। और मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी कि कई बार उल्टी हो जाती थी वो मलाई वाली चाय, मेरे को डर था कि कहीं वो सब नहीं हो जाए यहाँ। तो जैसे ही उनका कप पूरा हुआ और वो थोड़ा अंदर गए, तो उधर बगल में गमले पड़े हुए थे, तो गमले में डाल दिया हमने, गमले को चाय पिला दी मलाई वाली। वो आए, आए बड़ी जल्दी पी ली यार, बड़ी जल्दी पी लेते हो। तो ये मेरा फ्रेंड ये और चिढ़ाने के लिए बोलता है, सर इसको बहुत अच्छी लगती है आपकी चाय। अच्छा भाग्यवान, एक और कप बनाओ। तो यहां पर देखो, मना करने के भी तरीके होने चाहिए अच्छी से। इस्कॉन में बहुत अच्छी से सीख लेते हैं बाद में हम। दुर्योधन के मना करने का तरीका, सुई के नोक जितनी भूमि भी मैं नहीं दूंगा। और फिर भगवान ने कहा कि अब युद्ध अनिवार्य है। और उस समय दुर्योधन ने उसके सारे सैनिक वगैरह को तैयार रखा था द्वार पे, इसको गिरफ्तार करो केशव को। तो भगवान जोर जोर से हंसने लगे जब दुर्योधन ने ये कहा ना गिरफ्तार कर लो, तो भगवान जोर जोर से हंसने लगे। और फिर भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया, और विश्वरूप में सबसे पहले भगवान ने पांडवों को दिखाया। भगवान के कंधों के पीछे से पांडव दिख रहे हैं। दुर्योधन ने जब देखा पांडव यहां पर आ गए, और उसमें से सबसे आगे भीम बड़े अपने जबड़े को खोले हुए दुर्योधन की ओर, उसके उसके जबड़े से अग्नि निकल रही है बाहर। और जब दुशासन ने ये दृश्य देखा, वो दुम दबा के भाग गया। बाकी सारे भाई उन्होंने देखा, वो दुम दबा के भाग गए। दुर्योधन भी भाग गया वहां से, वो सारे सैनिक वो भाग गए जो गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त किए गए थे, वो सब भाग गए कि भाई वाह जान बची, पहले तो जान बचाओ यहां पर, तो ये क्या हो रहा है। तो फिर धृतराष्ट्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंधा है, दिख नहीं रहा है। तो धृतराष्ट्र संजय को पूछता है, क्या हो रहा है संजय, क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र हुआ चाहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। संजय कह रहा है विश्वरूप दिख रहा है यहां पर। तो धृतराष्ट्र अभी वो सब कुछ भूल गया, वो भगवान से कहता है मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। तो पूरी जिंदगी में धृतराष्ट्र को एक ही बार देखने का मौका मिला। भगवान ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दी इस आशा में कि कम से कम ये धृतराष्ट्र अगर मेरा विश्वरूप देख लेगा तो थोड़ी इसकी मति बदलेगी। तो धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दी, भगवान का विश्वरूप देखा, उसकी मति बदली नहीं। ये निर्धारित करता है कि भगवान का विश्वरूप केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो दुर्योधन ने भी देखा, दुशासन ने भी देखा, धृतराष्ट्र ने भी देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर भगवान ने कहा धृतराष्ट्र को कि धृतराष्ट्र तूने तेरे दुर्योधन की कुबुद्धि को देख लिया और मेरी शक्ति को देख लिया, अब युद्ध अनिवार्य है। और भगवान वहां से निकल पड़ते हैं। तो विदुर रोक लेते हैं, विदुर कहते हैं कि भगवान आज रात को आप यहीं रुक जाओ, कल जाना। तो भगवान रुक जाते हैं विदुर के घर पे। लेकिन शाम के समय भगवान कहते हैं विदुर को कि कर्ण से मिलना है मुझे। तो एकांत में भगवान शाम को कर्ण से मिलते हैं। सात्यकी को कहते हैं कि तू रथ से उतर जा, कर्ण को आजान दे रथ पर, तू कर्ण के रथ पर जा। अकेले भगवान कर्ण को कहते हैं कि कर्ण देख, सच्चाई ये है कि तू है सबसे ज्येष्ठ पांडव, तू कुंती पुत्र है, सबसे ज्येष्ठ कुंती पुत्र है। सब कुछ कर्ण को बताते हैं कि तू यदि पांडवों के साथ होगा तो पूरा अंग देश क्या, पूरा हस्तिनापुर तुझे मिलने वाला है। और कर्ण इतना सुनने के बावजूद कर्ण भगवान से कहता है कि मैं जानता हूं कि ये दुर्योधन कुकर्मी है, कुबुद्धि है, ये शकुनी, दुशासन, ये सब, परंतु मैं क्या करूं, मैं बाधित हूं। इसने जो मेरे पर उपकार किया है, भगवान ने कहा ये कोई उपकार नहीं है, ये केवल यूज कर रहा है कर्ण तुम्हें। और कर्ण ये भी जानता था, कर्ण बोलता है मैं वो भी जानता हूं, कल रात ही मुझे सपना आया कि युधिष्ठिर श्वेत वस्त्र धारण किए और श्वेत अश्वों के रथ पर युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं और दुर्योधन काला वस्त्र पहने हुए गधे के ऊपर बैठा वो पाताल की ओर जा रहा है, मुझे ये सपना आया कल रात को। तो भगवान कहते हैं जब तुमको ये सब संकेत मिल रहे हैं फिर भी तुम आ बैल मुझे मार कर रहे हो। कर्ण कहता है नहीं, मैं मेरी निष्ठा दुर्योधन के प्रति जो है वो नहीं छोड़ सकता। तो भगवान ने कहा कर्ण अब हमारी भेंट रणभूमि में होगी, बस मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। तो विदुर उस रात भगवान से पूछते हैं कि भगवान आप जानते थे कि आप असफल रहोगे, ये असत सभा जहां पर द्रौपदी का अपमान इन्होंने किया आप जानते थे, फिर भी आप क्यों आए यहां पर? अब ये महत्वपूर्ण है जानना। भगवान विदुर से कहते हैं कि यस विदुर मैं जानता था, हाँ मैं जानता था कि मैं अयशस्वी रहूंगा, मैं असफल रहूंगा, मैं अपने लिए नहीं आया, मैं पांडवों के लिए आया था कि कोई भी भविष्य में पांडवों के ऊपर उंगली ना उठाए कि मेरे पांडवों ने दुर्योधन को मौका नहीं दिया, मैं मेरे पांडवों के इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है, कृष्णा फेल्ड एज शांतिदूत टू विन एज अ भक्त वत्सल भगवान। तो भगवान जो अपने स्वयं की इमेज की परवाह नहीं कर रहे कि हां चाहे मेरा तिरस्कार कोई करता रहे कि देखो असफल रहे, ये गिरफ्तार करने के लिए दुर्योधन निकल पड़ा था, माना भी नहीं, कर्ण भी नहीं माना, कर्ण को मनवाने के लिए फेल हुए, दुर्योधन धृतराष्ट्र दुशासन इन सबको मनवाने के लिए फेल हुए, परंतु सबके पीछे भगवान का प्रयोजन यही था कि मेरा तिरस्कार सही मैं सहन कर लूंगा, परंतु पांडवों का कोई तिरस्कार करे वो मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए हमारा मुद्दा क्या था, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, व्हेन यू डू दीज टू थिंग्स यू विल एक्सपीरियंस द प्योरेस्ट। थैंक यू ऑल वेरी मच, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभुजी, इतना सुंदर क्लास, ये कृष्णधन प्रभु जी का बर्थडे गिफ्ट था क्या?
अरे वो
थैंक यू सो मच।
श्रीमान कृष्णधन प्रभु की जय।
तो
वी हैव बीन गिफ्टेड इन द फॉर्म ऑफ कृष्णधन प्रभु।
यस
हाँ बोलिए।
तो जैसे आपने बताया प्रभु जी कि इस प्रोसेस में जब हम लोग ये करते हैं कि बेस्ट के लिए स्ट्राइव करते हैं, तो उस प्रोसेस में हमारी सिचुएशन वर्स्ट के लिए प्रिपरेशन की कम होती है, क्योंकि पूरी एनर्जी हम लोग बेस्ट को स्ट्राइव करने के लिए करते हैं, तो उसके वजह से बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट आता है। तो क्या उस डिसअपॉइंटमेंट में हमारी शुद्धि यानी हम लोग को प्योरिटी प्राप्त होती है कि नहीं होती है? क्योंकि स्ट्राइव फॉर द बेस्ट करने के लिए इंटेंशंस गुरु साधु शास्त्र के वजह से बहुत ही प्योरीफाई रहते हैं, इन अ सेंस कि हमारा ध्येय तो प्योर रहता है वो चीज करने का। तो डिसअपॉइंटमेंट जब होता है तब हम लोग क्या समझे कि हमने क्या पाया?
जैसे कि जटायु जटायु बाह्य दृष्टिकोण से असफल रहे ना, बट ही स्ट्राइव्ड फॉर द बेस्ट. उन्होंने ही डिड हिज बेस्ट. जैसे वो स्लाइड था ना, यू डू योर बेस्ट. उन्होंने अपनी जितनी उनकी शक्ति थी वो पूरी शक्ति लगा दी. लेकिन अगर आप प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फेलियर थे वो. तो क्या वो मायूस हुए? हाँ, अपनी ओर से वो मायूस हुए कि मैं सीता को रोक नहीं पाया. लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या था? एंड रिजल्ट हम सब जानते हैं कि वो पूजनीय बन गए, जो दशरथ महाराज को भी नहीं प्राप्त हुआ वो जटायु को प्राप्त हुआ, कि डायरेक्टली भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया. तो हाँ, हम लोग जटायु के स्तर पर नहीं हैं, डिसअपॉइंटमेंट आएगा. रियलिस्टिकली देखा जाए तो डिसअपॉइंटमेंट आएगा, परंतु हमें ये समझना चाहिए कि हमको डिसअपॉइंटमेंट किसके लिए आना चाहिए, कि मैंने अपना सब कुछ नहीं दिया, उस पर डिसअपॉइंटमेंट आना चाहिए, उसके रिजल्ट पर नहीं आना चाहिए. जैसे कि राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि हयग्रीव प्रभु, प्रभुपाद के सीनियर मोस्ट डिसाइपल्स में थे, मतलब जस्ट प्रभुपाद अमेरिका में पहुंचे ही थे, सबसे इनिशियल फर्स्ट और सेकंड में से थे हयग्रीव प्रभु, इतने सीनियर. बीच में फिर उन्होंने इस्कॉन छोड़ दिया, उनको फिर कुछ बीमारी हुई और फिर से वो उसके वजह से इस्कॉन में आए, डिवोटीज के संग में आए. तो महाराज कह रहे थे कि महाराज जब उनसे मिलने गए, अब उनके पास टर्मिनली इल थे वो, जीने की कोई आशा नहीं थी, उस समय उन्होंने महाराज से कहा, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का मरते समय एक ही रिग्रेट है कि वो जो साल मैं प्रभुपाद की सेवा छोड़ दिया था वो साल फिर से नहीं आ सकते. आई कुड हैव गिवन सो मच मोर इन द मिशन ऑफ प्रभुपाद, बट आई कुडंट डू दैट एंड आई डिडंट डू दैट. दैट विल बी द ओनली रिग्रेट विथ विच आई विल डाई, उन्होंने बोला महाराज. तो एक डिवोटी का डिसअपॉइंटमेंट ये होना चाहिए, रिजल्ट नहीं. मैंने, हम सब जानते हैं हमारी क्षमता कितनी है, हम सब जानते हैं कि कैपेसिटी कितनी है हमारी. अगर हम पूरी कैपेसिटी भगवान को नहीं देके कुछ उसमें रखते हैं अपने खुद के लिए, तो हाँ वो चीज अखरती रहनी चाहिए हमें. और अगर वो चीज अखरेगी भी नहीं, वो ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है. तो हाँ, रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो उनके ऊपर है, वो उनके ऊपर है. लेकिन फाइनली, मतलब एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान की योजना थी कि जटायु जो है वो असफल रहें. अभी इतनी पूरी रामायण जो आगे हुई, जटायु अगर सफल हो जाते तो फिर आगे की कुछ रामायण ही होती नहीं थी, विजयदशमी नहीं मनाते थे हम लोग. तो कई बार भगवान की योजना भी होती है कि हमको कई कार्यों में असफल बनाए, तो बिग पिक्चर देखना. जय श्रील प्रभुपाद की, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जय निताय गौर प्रेमानंदी.
हरे कृष्णा. कुछ महत्वपूर्ण सूचना. ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि नासिक इस्कॉन के बड़ी बड़ी विभूतियों का अपीयरेंस डे सितंबर में आता है, तो उनको सबको हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे. और इसी के उपलक्ष्य में ये हफ्ते में जो ब्राह्मण भोजन स्पॉन्सर किए हैं, इनका नाम इस प्रकार से है, NS गायकर, गौरांगी अग्रवाल और राजेंद्र जंगली प्रभु, इन सब ने मिलकर इस हफ्ते में ब्राह्मण भोजन का स्पॉन्सर किया. उन सबको धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, बोल.